असहज मानुष है। मानुष मतलब मनुष्य, असहज मतलब लहरों में कंप में जो जीता है असहज। क्योंकि हम जो कंपित जीते हैं, हम जो दुखी जीते हैं, हम जो पीड़ित होकर के जीते हैं, ये हमारी सहज अवस्था नहीं है। जैसे समंदर की सहज अवस्था क्या है, लहरें उसकी सहज अवस्था नहीं है। अब 5 किलोमीटर प्रशांत महासागर की गहराई में अगर 10, 20 या 30 फीट ऊपर लहरें हैं, उसको सहज अवस्था मानोगे या जो शांत प्रगल्भ उस अवस्था को सहज कहोगे? निश्चित रूप से जो 5 किलोमीटर की स्थिति है उसको ही उसकी नेचुरल स्थिति मानोगे। तो बाउल कहते हैं कि जो असहज रूप में हम जीते हैं ये हमारी नेचुरल अवस्था नहीं है। हमारी नेचुरल अवस्था क्या है? सहज मानुष। सह पहला कदम, इसलिए सहज होकर के जियो, उत्तेजना मुक्त होकर के जियो, सब्जेक्टिविटी के तल पर जियो। हम ऑब्जेक्टिविटी के तल पर जीते हैं, शरीर के तल पर, मन के तल पर। और दूसरा कदम क्या है? आधार मानुष से जुड़ के जियो। समंदर है, समंदर के 3 कह सकते हो भाग हो सकते हैं। पहला क्या है? ऊपर लहरों का। दूसरा क्या है? जो शांत जल है। और तीसरा क्या है? जिस पर जल ये टिका है, जो तलहटी है। उसकी उपमा वो गोविंद से देते हैं, उसको आधार मानुष कहते हैं। गोविंद वो हमारे प्राणों का आधार है, तो उससे जुड़ करके जियो, आधार मानुष से जुड़ करके जियो। तो 2 ही कदम की यात्रा है, सहज मानुष होना और आधार मानुष से मिलकर जीना। इस तरह से सहज अर्थात ओंकार, सहज अर्थात निरंकार, सहज अर्थात स्वाभाविक, सहज अर्थात जो गोविंद है, ओंकार स्वरूप गोविंद है, उससे जुड़ करके जीना सहज योग है। ओंकार के कई नाम है, ओंकार उद्गीत, उपनिषद का ऋषि कहता है उद्गीत। ऐसे ही प्रणव भी ओंकार को कहते हैं, कई नामों से ओंकार को पुकारा जाता है। अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, वैसे ही संत इसको नाम कहते हैं। नाम जब संत कहता है नाम अर्थात ओंकार, ऐसे ही शब्द जब संत कहता है शब्द, शब्द बंधेया सब रहे, दादू साहब कहते हैं सब शब्द से बंधे हुए हैं, ओंकार से बंधे हुए हैं। शब्द गुरु शब्द चेला, कबीर साहब कहते हैं ओंकार से ही कोई गुरु होता है, ओंकार से ओंकार को जान करके कोई गुरु होता है, और ओंकार को जान करके ही कोई चेला होता है। ओंकार के अगर नहीं जानते न तो तुम गुरु हुए न तो तुम चेला हुए। जो ओंकार को में स्थित हो जाता है वो गुरु है, और जो ओंकार का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो चेला है। अब उसको भी स्थित हो जाना है, उसमें बस इतना ही है, फर्क इतना ही है। ठीक ऐसे ही जीसस इसको लोगोस कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ऐसे ही मोहम्मद साहब इसको कहते हैं सदाए आसमानी, आसमान से एक आवाज आ रही है, बांगे आसमानी, जैसे मुर्गे बांग देता है ऐसे ही आसमान से खुदा बांग दे रहा है, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नाम हैं इसके, लेकिन जितने भी धर्म पैदा हुए सब ओंकार से पैदा हुए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जीविज्म हो, या हिंदुइज्म हो, या जैनिज्म हो, या बुद्धिज्म हो। इनके सारे प्रवर्तकों ने जाना क्या, जिसके आधार पर धर्म की धारा बही, ये सब ने ओंकार जाना। मोहम्मद साहब से लोगों ने पूछा कि आपने क्या जाना उन गारेहारा की पहाड़ियों में गुफा में, आखिर जाना क्या कि उसके बाद कुरान की आयतें निकलना शुरू हुई? बोला हमने खुदा के नूर को जाना, हमने सदाए आसमानी को जाना, हमने उसके नूर को जाना। ठीक ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने समाधि ली 3 दिन की, जब आए तो बिल्कुल बदले बदले से आए, और पूछा लोगों ने आपने क्या जाना, उनका हमने जाना एक ओंकार सत्यनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी स्वयंभम। लोगों ने पूछा हमको कैसे मिलेगा, कहा गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से मिलेगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरु नानक देव जी जब 15 साल के थे तभी उनको ओंकार का ज्ञान तो हो गया था। जैसे कल तुमको ओंकार का ज्ञान हो जाएगा, लेकिन ओंकार का ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है, असली बात है ओंकार में स्थित होना। और इसमें उनको काफ़ी वक्त लग गया, 36 साल की उम्र में वे ओंकार में ग्राउंडिंग हो गई उनकी। और कैसे, इसको बहुत थोड़े से सिख विद्वान भी इसको जानते हैं। गुरु नानक देव जी के जो बच्चे थे 15 साल के करीब समझो, तो उनके पिता कालू मेहता जी ने कहा कि अब थोड़ा व्यापार करो, बड़े हो गए, और उनको 20 रुपये दिए कि जा करके थोड़ा बढ़िया सौदा, फायदे का सौदा करना, ऐसी जगह पूंजी लगाना कि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े। चले अपना, सोचते जा रहे थे कि क्या खरीदें, क्या चीज़ का व्यापार करें। तब तक देखा साधुओं का एक समूह देखा, और कबीर साहब उन साधुओं के नेता थे। तो कबीर साहब ने कहा कि बाले, बाले कहते हैं प्यारे को, प्यारे कहाँ जा रहे हो? नानक देव जी बोले कि पिताजी ने कहा है कि पूंजी ऐसी जगह लगाना कि फायदा ही फायदा व्यापार में हो। कबीर साहब ने कहा कि ऐसा सौदा दूंगा कि उस सौदे के तुलना में कोई सौदा संसार का फीका पड़ जाएगा, वो सौदा लोगे? नानक देव जी ने कहा कि ज़रूर लेंगे, अगर ऐसा सौदा तुम्हारे पास है जिससे बढ़िया सौदा हो ही नहीं सकता। और उसी समय ओंकार का ज्ञान दे दिया। और नानक देव जी ने कहा कि ओहो, और वो 20 रुपये उनके चरणों पर रख दिए। लोग कहते हैं कि खिला दिया, ऐसा आता है साहित्य में। उस जमाने में 1 पैसे एक आदमी के भोजन के लिए काफ़ी होता था, और 20 साधु थे तो 20 पैसे में खा लिए होंगे। 20 रुपये खिलाने, उस जमाने का 20 रुपये मतलब आज का 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपये का भोजन कोई 20 आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता। सारा उन्होंने कहा कि ये रही मेरी पूंजी जो सौदा तुमने दिया। जब लौट के आए तो पिता ने कहा क्या खरीदा? बोला कि पिताजी ऐसा सौदा करके आए हैं ना, वो जन्मों जन्म काम आएगा। अब कालू मेहता जी ने क्या समझे, खूब डांटा फटकारा, जो करना था तक किया। लेकिन वास्तव में, लेकिन ये मैच्योर हुआ कब? 36 वर्ष की उम्र थी उनकी, और उस समय ये ओंकार मैच्योर हुआ। तो जिसने भी जाना, चाहे जीसस हो कि मोहम्मद साहब हों, कि कृष्ण हों, कि बुद्ध हों, कि महावीर हों, जिसने भी जाना कि ओशो, जिसने भी जाना आखिर जाना क्या, जिसको जानने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं रहता, मगर जानना काफी नहीं है, उस होना पड़ता है। ज्ञान से प्रभु जाना जाता है। सुनो, ओशो का बड़ा प्यारा वक्तव्य है, ज्ञान से परमात्मा जाना जाता है, प्रेम से परमात्मा हुआ जाता है। ज्ञान साधन है, प्रेम सिद्धि है। जान तो तुम ही कर लोगे, लेकिन जानने से नहीं होगा, उसमें मिट जाना होगा, उसके प्रेम में गल जाना होगा। कैसे गलेंगे, ये सहज योग का विषय है। कैसे ओंकार के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, ये सहज योग का विषय है। पलटू साहब कहते हैं कि मार्ग तो कई हैं, लेकिन सहज की राह एक संतों ने काढ़ी है। एक सहज योग का मार्ग संतों ने जो बनाया है उसका कोई जवाब नहीं है। गौतम बुद्ध जब विदा होने लगे तो लोगों ने पूछा, और सबको बुलाया गौतम बुद्ध ने, सारे जो स्थविर थे, जितने उनके आचार्य थे, सबको स्थविर कहा जाता था, वे एक से एक थे। 100 लोग तो परम ज्ञान को उपलब्ध थे, सारे स्थविरों को बुलाया। विमल कीर्ति था, पूर्ण था, महाकाश्यप था, कश्यप था, सारिपुत्र था, सुभूति था, मुद्गलायन था, मंजुश्री था, एक से एक उनके शिष्य थे। बड़ी गरिमा थी, बड़ा गौरव था। सबको बुलाया, कहा कि मेरे जाने का वक्त आ गया, और मैं तुम सबसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो शिक्षा दी, मेरी शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा कौन है? अब जैसे ओशो जाने वाले हों और अपने सारे शिष्यों को बुलाएं कि मैंने इतना कुछ बोला पिछले कई वर्षों में, तुम बताओ कि मेरी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? बड़ा मुश्किल मामला हो जाए। बुलाया उन्होंने, आनंद को बुलाया कि आनंद तुम बताओ। आनंद ने कहा कि आपकी सारी शिक्षाओं में जो आपने धम्मपद में शिक्षा दी, हीन यान की शिक्षा दी, निष्कामता का मार्ग बताया, वैराग्य का जो मार्ग बताया, मेरे देखे ये सबसे बढ़िया शिक्षा थी। बुद्ध ने कहा सारिपुत्र तुम बताओ। सारिपुत्र ने कहा कि धम्मपद वाली बात तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन आपने प्रज्ञापारमिता में जो प्रेम की बात कही, जो महायान की बात कही, वो सबसे बढ़िया बात थी। कहा कि ठीक सुभूति तुम बताओ। सुभूति ने कहा कि चलो धम्मपद वाली शिक्षा भी अच्छी थी, प्रज्ञापारमिता वाली भी शिक्षा अच्छी थी, लेकिन आपने जो प्रज्ञापारमिता वज्र छेदिका में वज्रयान की बात बताई कि जीवन आनंद है, ये सबसे बढ़िया लगा। और ऐसे ही जितने भी लोग थे सबसे बुद्ध ने पूछा तुम बताओ तुम बताओ। अंत में मंजूश्री को बुलाया, कहा कि मंजूश्री तुम हमारे शिष्यों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली हो, तुम बताओ कि मेरी शिक्षाओं में श्रेष्ठतम शिक्षा क्या है। मंजूश्री बड़ा प्रतिभाशाली था। मंजूश्री ने कहा कि गुरुदेव कोबर छोट कहता अपराध हूँ, आपकी कौन सी शिक्षा को मैं श्रेष्ठ कहूँ और कौन सी निकृष्ट कहूँ। गुरु की हर शिक्षा श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी जब आप पूछते ही हो तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो सहज ज्ञान की शिक्षा दी, जो सहज योग की शिक्षा दी, जो ओंकार की शिक्षा दी, उस पर चलने के लिए आपकी थोड़ी सी कृपा भी हो तो उस पर चल करके परम सत्य परमानंद पाया जा सकता है, लेकिन बाकी शिक्षाओं पर चलने के लिए आपकी बड़ी कृपा चाहिए तभी आदमी पहुंच सकता है। अब देख लो कहने का अंदाज देख रहे हो, ये नहीं कह रहा है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और सब कह भी दिया, कहा कि धम्मपद प्रज्ञापारमिता, प्रज्ञापारमिता वज्र छेदिका, हीनयान महायान वज्रयान, इस पर चलने के लिए और परम सत्य तक मंजिल तक जाने के लिए आपकी बड़ी कृपा चाहिए, ढेर सारी, लेकिन ये सहज ज्ञान ओंकार वाली जो बात है इसमें आपकी थोड़ी भी कृपा हो जाए तो आदमी पहुंच जाएगा। क्या कह दिया, सब कुछ कह दिया कि सहज योग का मार्ग राजमार्ग है, और तुमको जान करके आश्चर्य होगा कि मानवता के इतिहास में जितने लोगों ने परम सत्य पाया है, परमानंद को जाना है, 99.9% सहज योग के मार्ग से उन्होंने पाया है। कोई हमसे कह रहा था कि ओशो कहते हैं आनापान सति योग के मार्ग माध्यम से 99% लोगों ने पाया है, ये बात भी सही है, लेकिन कैसे सही है, ये ब्रिज है। जैसे मान लो कोई पानीपत से दिल्ली जाएगा तो 99% मूर्थल से गुजरेगा, जो भी इधर से आएगा 99%, कोई एक आध बहादुरगढ़ के तरफ से आ जाएगा कहीं से, लेकिन मूर्थल दिल्ली नहीं है। आनापान सति योग के ब्रिज पर तुम खड़े हो जाओ तो तुम दिल्ली नहीं पहुंचोगे, तुम मूर्थल में। लेकिन वास्तव में जब दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करोगे तब तो दिल्ली जाओगे। ये बॉर्डर क्रॉसिंग ओंकार से होता है, ओंकार की नाव ही बॉर्डर को क्रॉस कर सकती है, बाकी बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता है। यह ओंकार का मार्ग सहज मार्ग है, सहज योग का मार्ग है, एक कह सकते हो कि सर्वाधिक सुगम, सर्वाधिक सरल, सर्वाधिक उपयोगी, सर्वाधिक वेल प्रूफ कह सकते हो। तो आओ अब सहज योग की बात करते हैं। सहज योग का पहला सोपान है नाम स्वाध्याय। कई स्टेजेस हैं, अब सभी स्टेज की बात कर लेते हैं। पूरा मानचित्र मैं तुमको देना चाहता हूं ताकि मानचित्र को जान लो तो पता चलेगा कि तुम कहाँ खड़े हो और कितने माइलस्टोन्स तुम्हें तय करने हैं। पहला है नाम स्वाध्याय। जहां जहां नाम की चर्चा हो, जहां जहां नाम की बात हो, उसको पढ़ो। जैसे गीता में अक्षर योग एक अध्याय है, पूरा ओंकार पर है, कृष्ण ओंकार के बारे में बताते हैं अक्षर योग में। बाकी गीता में ओंकार की चर्चा नहीं है। अब क्या तो सहज योग के मार्ग पर चलने, क्योंकि बाकी गीता में कर्मयोग की चर्चा है, अठ योग की चर्चा, भक्ति योग की चर्चा, ज्ञान योग की चर्चा, सांख्य योग की चर्चा, ज्ञान, लेकिन एक अध्याय ऐसा है अक्षर योग जिसमें ओंकार की ही चर्चा है। ऐसे ही बाइबिल में, पूरी बाइबिल में ओंकार की चर्चा नहीं है, मगर एक जगह देयर वाज वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड क्रिएटेड यूनिवर्स, एक जगह जीसस ओंकार की चर्चा करते, उसको पढ़ो। पूरे कुरान ओंकार से भरा हुआ नहीं है, लेकिन एक जगह मोहम्मद साहब ओंकार की पूरी बात कर रहे हैं, वो पठनीय है। ऐसे धम्मपद में बुद्ध एक जगह ओंकार की बात कर रहे हैं, कहते हैं उन हजार शब्दों को पढ़ने की जगह उस एक शब्द को पढ़ लो जिसको पढ़ने के बाद कुछ पढ़ने को बाकी नहीं रहता। एक ग्रंथ अद्भुत है, गुरु ग्रंथ साहब। गुरु अर्जुन देव जी के सामने समस्या आई कि किसको रखें और किसको नहीं रखें, इतने संतों की वाणी है, कबीर साहब, रविदास साहब, और उन्होंने यही मापदंड रखा कि जिस शब्द में ओंकार की चर्चा है उसको रख लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब बिल्कुल मक्खन है, बाकी में तुमको बहुत मथने की जरूरत पड़ेगी। गीता को मथना पड़ेगा, उपनिषद को मथना पड़ेगा, वेद को मथना पड़ेगा, तब कहीं ओंकार का मक्खन मिलेगा। और ये मथा हुआ है, गुरु अर्जुन देव जी ने तुम्हारे लिए मथ करके केवल मक्खन परोस दिया है, उसको पढ़ो। ऐसे ही जहां ओशो की किताबें हैं, ओशो के प्रवचन हैं, पढ़ो। लेकिन हर प्रवचन में ओशो ने ओंकार की चर्चा किया, हर प्रवचन में। ओशो का एक भी प्रवचन ऐसा नहीं है जिसमें ओंकार की चर्चा नहीं है। लेकिन हम सब पढ़ते हैं, क्योंकि परिचय नहीं है तो उससे आंख फिसल जाती है। जैसे तुम यहां से जा रहे हो दिल्ली और तुम गाड़ी चला रहे हो, हजारों लोग दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन नजर तुम्हारी नहीं टिक रही है, लेकिन कोई परिचित दिखेगा अब तुम्हारी नजर वहां टिक जाएगी, गाड़ी रोक दोगे तुम उसके लिए। ठीक ऐसे ही जो चीज हमारे लिए अपरिचित होती है उस पर हमारी नजर टिकती नहीं। ओशो ने बार बार ओंकार पर बोला, लेकिन ओशो के प्रेमी, ओशो के चाहने वाले बस सब कुछ तर्क याद कर लिया लेकिन ओंकार से चुप के, बस वो भर समझ में नहीं आया क्योंकि वहां उनकी गाड़ी रुकी ही नहीं। तो जहां जहां ओंकार की चर्चा है उसको पढ़ो। इसका नाम है नाम स्वाध्याय। दूसरा चरण नाम सत्संग। नाम सत्संग का अर्थ है कि अब पढ़ने से नहीं होगा, अब थोड़ा संतों का संग करो। जो संत नाम की चर्चा करता हो उस संत की बात सुनो, वहां जाओ, उसके चरणों में बैठो। जैसे आजकल विभिन्न चैनलों पर भी बात हो रही है, सत्संग हो रहा है, लेकिन सब नाम सत्संग नहीं है। किसी भी संत का सुनो, 100 से ज्यादा संत भी चैनल पर बोल रहे हैं लेकिन एक दो ही संत नाम की बात कर रहे हैं, और वो भी सत्संग की महिमा ज्यादातर लोग आ रहे हैं, याद रखना। लेकिन जैसे तुम संत राजेंद्र सिंह को सुनो, सावन कृपाल मिशन नाम की चर्चा करते हैं, गाहे बगाहे तुम जो डिवाइन लाइट मिशन है उसके संत सतपाल महाराज, कभी कभी वो भी ओंकार की चर्चा कर रहे हैं। मधु परमहंस को सुनो, कबीर पंथ, कभी कभी वो भी ओंकार की चर्चा कर रहे हैं भले। और ओशो धारा में तो नाम ही नाम है, इसके अतिरिक्त तो वहां कोई बात ही नहीं है, लेकिन नाम की चर्चा नहीं हो रही। इसलिए नाम सत्संग नहीं है, सत्संग है, चलो मान लेते हैं सत्संग है, लेकिन नाम सत्संग सब नहीं है। और नाम सत्संग जो नहीं है, कबीर साहब तो उसको सत्संग भी मानने को तैयार नहीं, मैं तो मान ले रहा हूं चलो कहीं अच्छी बात हो रही है, लेकिन कबीर साहब जहां नाम की चर्चा नहीं हो रही है उसको सत्संग मानने को राजी नहीं है। कहते हैं कबीर साहब कि संगत ही जर जाओ न चर्चा राम की। अच्छा, ओंकार को राम भी कहते हैं, नाम भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, राम के जितने पर्याय हैं वो सब ओंकार के भी पर्याय हैं, कृष्ण के जितने भी पर्याय हैं वो ओंकार के पर्याय हैं। केवल भेद इतना ही है कि जब राम का पर्याय जब संत बोलता है तो डिवाइन साउंड की बात हो रही है, उसके श्रव्य रूप की बात हो रही है। अब जब कृष्ण का पर्याय शब्द बोलता है, जैसे गोपाल है, ऐसा श्याम है, तो वो डिवाइन लाइट की बात करता है, ओंकार के दृश्य स्वरूप की बात करता है। जब राम का पर्याय यूज करता है तो ओंकार के श्रव्य रूप की बात करता है। तो कहते हैं कबीर साहब कि संगत ही जर जाओ न चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। ऐसे ही हुआ, मैं एक बारात में गया तो वहां पर वो दूल्हे वाली गाड़ी पीछे रह गई, गाड़ी खराब हो गई, बारातियों की गाड़ी पहले पहुंच गई, न कोई चाय पूछ रहा है न पानी पूछ रहा है। तो हमने एक युवक को देखा, गांव का ही था, मैंने कहा भाई बारात आई है, कुछ चाय पानी कुछ नहीं कराओगे? बोला कि उसने कहा बारात कहाँ है? हम कहा कि ये सब बारात तो है। बोला दूल्हा कहाँ है? उनके दूल्हा आ रहा है। उनके दूल्हा आएगा तब बारात बनेगी, फिर चाय भी पिलाएंगे भैया। दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की? दूल्हा है नहीं तब तक कोई भी बारात मानने को राजी नहीं है। इसलिए जब तक नाम की चर्चा नहीं हो रही है, ओंकार की चर्चा नहीं हो रही है, तब तक सत्संग नहीं है। तो जहां ओंकार की चर्चा हो वहां जाओ, वहां सुनो कि संत क्या बोल रहा है। ये दूसरा चरण, नाम सत्संग। क्यों? केवल पढ़ने से नहीं किताब होगा, पढ़ के प्यास पैदा होगी, थोड़ी दिशा मिलेगी, सत्संग से होगा। सत्संग करते करते क्या हो जाएगा? किसी ने गुरु नानक देव जी से पूछा परमात्मा कैसे मिलेगा? गुरु नानक देव जी ने कहा गुरु से, गुरु प्रसाद। फिर उसने पूछा कि गुरु कैसे मिलेगा? कहा सत्संग से। सत्संग करते 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 कहीं तुम्हारे हृदय का तार झंझना उठेगा और हृदय में एक अनुराग पैदा होगा। संत कई हैं लेकिन कहीं ना कहीं तुमको लगेगा वही है जिसको मैं खोजता था, यही है वे चरण जहां मैं अपना सर रख सकता हूं, और वही तुम्हारा गुरु होता है, जहां तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों राजी हो जाता है। केवल दिमाग राजी हो जाए नहीं, और केवल दिल राजी हो जाए वो भी नहीं। दिल तो तुम्हारा प्रेम में ऐसे ही राजी हो जाता है कहीं से कहीं। हमारा छोटा भाई किसी लड़की के प्रेम में पड़ गया। मेरे पिताजी ने कहा कि सुनो तुम्हारा भाई जो है गधा पचीसी में पड़ गया है। मैंने कहा पिताजी ये गधा पचीसी क्या होती है? मतलब गधा पचीसी जैसे जैसे कोई युवक 25 साल का होता है तो उसको जैसे गधे को सावन में सब हरा ही हरा सोचता है, तो 25 साल में कोई भी युवती उसको कोई भी गर्द भी अच्छी लगने लगती है उसको, इसको गधा पचीसी बोलते, उसको समझाओ। इसलिए जरूरी है कि दिल और दिमाग जरा दोनों राजी हो जाए। तो सिर्फ नहीं कर दोगे, थोड़ा संदेह से भरे जरा देख लो। एक हमारे बड़े प्यारे ओशोधारा के बंदे हैं, रामेश्वर जी उनका नाम है, उनकी मकान मालकिन यहीं पर बैठी हुई है। तो रामेश्वर जी आए, वो आते थे और चले जाते थे नेपाल आश्रम में, 2-3-4 दिन रहते थे, पुराने सन्यासी हैं। एक दिन मैंने पूछा कि क्या बात है तुम बार बार आते हो, 2-3-4 दिन रहते हो फिर चले जाते हो, कुछ प्रोग्राम वगैरह नहीं करते हो? कहा कि जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं सच्ची बात बताऊं कि हाँ, तो अभी जरा नाप तौल करने आया हूँ, जरा घड़े को देखता हूँ ठकठका करके, ये घड़ा ठीक है नहीं है, और जरा नापने चाहता हूँ कि इन समुंदरों की गहराई कितनी है। तो मैं भी खूब हंसा कि हाँ जरूर कर ही लो, मगर एक भविष्यवाणी मैं तुमको कर देता हूँ, कोई नमक का पुतला अगर सागर की गहराई नापने चलेगा तो सागर की गहराई तो नहीं नापेगा, मगर एक बात पक्की है, कोई नमक का पुतला गल जाएगा, और यही स्थिति तुम्हारी होने वाली है। और वही उनकी दशा हुई, वो नमक का पुतला कहाँ गया सागर में विलीन होकर के। आज तो ओशोधारा के सारे कार्यक्रम करीब करीब उन्होंने किया है बहुत प्यारे, और ओशोधारा संघ के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो निश्चित रूप से जरा दिल दिमाग दोनों राजी होना चाहिए, तब समझना कि बस यही वे चरण है जहां आप अपनी जिंदगी की बागडोर सौंप सकते हैं। इसका नाम है नाम गुरु, ये तीसरा चरण। चौथा चरण नाम दीक्षा। अब गुरु तुम्हारा प्रसन्न होता है, गुरु की कृपा होती है तुम पर, और गुरु तुमको नाम दान देता है, नाम की दीक्षा देता है। और नाम की दीक्षा क्या है? ओंकार का ज्ञान तुमको देता है, ओंकार का रहस्य तुम पर खोलता है। पुराने जमाने में नाम दीक्षा बड़ी दुर्लभ घटना थी, लोग देते नहीं थे, आज भी दुर्लभ है। जैसे कबीर साहब के 484 शिष्य थे, लेकिन कबीर साहब ने एक बंदे को केवल नाम दीक्षा दी, 483 को नहीं दिया। उस बंदे का नाम था धर्मदास, और धर्मदास को कहा धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार वस्तु बाहर नहीं जाई। ये भेद की बात कहीं नहीं जाना चाहिए, इतना बहुमूल्य। लोग हमसे अक्सर पूछते हैं सत्संग के बाद कि ओंकार की दीक्षा संत क्यों नहीं सबको दे देते। तो अक्सर मैं कहा करता हूँ कि तुम अब बच्चे को 100 रुपये का नोट तो देते नहीं हो, छोटा बच्चा है, तुम नहीं देते हो 100 रुपये का नोट। क्यों क्यों नहीं देते हो? कदर नहीं करेगा, फाड़ देगा, कुछ कर देगा। और जो परम धन है, मिलियन 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 डॉलर का नोट है, उसको ऐसे ही किसी के हाथ में दिया जा सकता है? उसी के हाथ में दिया जाएगा जो उसकी कदर करना जानता है। इतनी परंपराएं हैं, वे इंतजार करती हैं कि कब तुम कदर करने लायक बन जाओ, तब वो तुमको देते हैं। कब तुम्हारी चुनरी जरा साफ हो जाए, तब वो रंग से रंगते हैं, ओंकार के रंग से रंगते हैं। लोग हमसे तब ये भी पूछते हैं कि ओशो धारा क्यों 8वें दिन तब ओंकार का ज्ञान दे देती है? इसका कारण है, 8 दिन तक तुमको हम कदर करने लायक बनाते हैं, 8 दिन तक तुम्हारी ड्राई क्लीनिंग करते हैं जरा, और फिर ओंकार के रंग से रंगते हैं। अब कदर करने लायक भी बनाने का दायित्व हमने, इसलिए 8 दिन तुम्हारी कुटाई पिटाई छटाई ठोकाई, जरा वो मूर्ति से छेनी हथौड़ी से चला रहे हैं, देखते हो लगातार चल रही है छेनी हथौड़ी, ताकि तुम्हारा तुमसे एक मूर्ति गढ़ी जाए, तब ओंकार का रंग उस पर लगाया जा सके। आज 6-7 दिन के बाद तुम राजी हो गए कि अच्छा अब दारू नहीं पियेंगे, अच्छा अब मुर्गे की टांग नहीं खींचेंगे। अगर पहले दिन मैं कहता तो अब 50% लोग तो राजी नहीं होते। क्यों? इन 6-7 दिनों में तुम इस लायक हो गए कि मुर्गे की टांग और परमात्मा में चुनना हो तो परमात्मा चुन लोगे, लेकिन ये तुम्हारी आज की स्थिति है। पहले दिन जब आए थे ये स्थिति तुम्हारी नहीं थी, आज की स्थिति होगी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तराजू के एक पलड़े पर 1 करोड़ रुपया और दूसरे पलड़े पर परमात्मा हो, आप किसको चुनोगे? पत्नी ने कहा कि निश्चित 1 करोड़ रुपये को चुनोगे, परमात्मा का क्या खर्च? मैंने कहा कि भाई जरा सोच समझ के बताओ, थोड़ा टाइम लो, देर इज नो हरी। उनके इसमें हरी की बात नहीं, आप हमसे कभी भी पूछ लो, हमारे उत्तर वही होगा, परमात्मा का क्या करना। फिर वे यहाँ पर आई, उन्होंने अपना ओंकार दीक्षा ली, अब तो अमृत समाधि भी कर चुकी हूँ। तो जब ओंकार दीक्षा हो गई, मैंने कहा कि मैं वो प्रश्न फिर आज दोहराता हूँ कि 1 पलड़े पर 1 करोड़ रुपया और 2 पलड़े पर परमात्मा, आप क्या करोगे? मतलब करोड़ का क्या करना है? परमात्मा बदल गया, वो नजरिया देखो बदल गया, लेकिन इस नजरिया बदलने में टाइम लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, तो वक्त लगता है अप्रिशिएट करने में कि गोविंद मूल्यवान है। नाम दीक्षा, नाम दीक्षा के बाद अगला चरण है नाम श्रवण। अब पहली बार नाम के श्रव्य रूप को तुम जानते हो, डिवाइन साउंड, वो परम संगीत है। अब उसको सुनना शुरू कर देते हो, उसके सुनने में रमण करना शुरू कर देते हो, उसको सुनना एंजॉय करना शुरू कर देते हो। श्रवण और सुनने में अंतर है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। व्हाट इज दैट डिफरेंस? व्हेन यू आर हियरिंग समथिंग यू आर फुल ऑफ थॉट्स, बट वेन यू आर लिसनिंग समथिंग यू हैव नो थॉट्स, यू आर ओनली लिसनिंग द म्यूजिक, द कॉस्मिक म्यूजिक। दिस इज द स्टेज ऑफ नाम लिसनिंग, निर्विचार होकर के सुनना, परम मौन में होकर के सुनना। यू आर परफेक्टली साइलेंट एंड देन यू आर लिसनिंग। एक भूरी बाई संत थी महाराष्ट्र की, पहले महाराष्ट्र में थी, बाद में राजस्थान में चली गई। उसको ओशो से बहुत प्रेम था भूरी बाई को, और भूरी बाई के हजारों फॉलोअर्स थे, और भूरी बाई एक किताब लिख रही थी, बरसों से लिख रही थी। उसके शिष्यों ने पूछा कि भूरी बाई ये किताब का विमोचन कब होगा? भूरी बाई ने कहा कि अगर बाप जी तैयार हो जाए विमोचन करने को, ओशो को बाप जी कहती थी कि बाप जी अगर विमोचन करने को तैयार हो जाए तो अभी मैं तैयार हूँ। उसके शिष्य पहुँचे पूना, ओशो से कांटेक्ट किया कि हमारी गुरुआइन है किताब लिख रही है, वो 30-40 साल से लिख रही है, और कहते हैं कि विमोचन आप तैयार हो जाते हो, विमोचन हम लोग भी उत्सुक हैं जानने को कि मेरी गुरु क्या लिख रही है बरसों से किताब, कैसी किताब है वो। ओशो भी मुस्कुराए, उन्होंने कहा हाँ जरूर भूरी बाई की किताब का तो विमोचन हम करेंगे, उसको ले आओ। लोगों ने आके बताया भूरी बाई को कि वो ओशो तैयार हो गए तुम्हारी किताब का विमोचन करने को। तैयार हो गए, लगी नाचने भूरी बाई, चलो चलो तैयारी करो जल्दी चलो। और वहाँ आई अपने एक शिष्य के यहाँ ठहरी और वहाँ से लंबा जुलूस, 1 किलोमीटर का जुलूस, आगे आगे भूरी बाई अपने माथे पर किताब का एक पोर्शन, और किताब 1 किलोमीटर लंबी थी, इतनी अब टनों कागज पर उसने लिखा हुआ था। जब वहाँ पूना आश्रम के गेट पर पहुँची, लोगों ने ओशो को बताया कि वो भूरी बाई आई है किताब का विमोचन कराए। उसने हाँ बुलाओ बुलाओ, कहा कि बुलाए, उसकी किताब 1 किलोमीटर लंबी है और इतने बंदे सब माथे पर किताब का एक पोर्शन, दूसरा पोर्शन। ओशो भी ताजुब, कौन सी किताब लिख रही है, अच्छा उसके साथ 5 लोगों को बुला लो। भूरी बाई 5 लोग, भूरी बाई ने बहुत धन्यवाद दिया, बाप जी आप तैयार हो गए मेरी किताब का विमोचन करने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओशो ने कहा कि लाओ भूरी बाई तेरी किताब तो देखे कैसी किताब है, तू सुना 30-40 साल से लिख रही है। हाँ बाप जी, करना क्या था, यही तो काम ही था अपना। ओशो ने देखा किताब पलटने लगे पढ़ने, कहा कि भूरी बाई तुमने तो हद कर दिया, सूफियों की किताबों को भी तुमने बिल्कुल कर दिया, उससे भी अच्छी किताब तुमने लिख दी। सूफियों की किताब जो है जो गुरु शिष्य को देता है तो कोरी किताब होती है, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल कोरी किताब है। मास्टर जब दीक्षा देकर के किताब देता है, ये किताब उसे कुछ लिखा नहीं होता है, अर्थात एक संकेत कि कोरा हो जाओ, जो भी तुमने पढ़ा है जो भी तुम जानते हो बस कोरा हो जाओ, शून्य हो जाओ, निराकार हो जाओ। इशारा है निराकार में सब कुछ, आकार में कुछ नहीं, लेकिन तुमने तो वो भेद भी बता दिया जो सूफी मास्टर संकेत से कहता है, वो भी तुमने राज जाहिर कर दिया। भूरी बाई ने पूरी किताब में एक ही शब्द लिखा था, चुप चुप चुप, बस वही लिखती थी चुप, और उसकी झोपड़ी पर भी बाहर कोई राम नाम नहीं लिखा रहता था, चुप, पूरी झोपड़ी के चारों तरफ चुप। इशारा था मौन हो जाओ, और उस मौन में वो परम संगीत सुनाई देता है।